साथियों नमस्कार। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर। जल संरक्षण क्योंकि जिंदगी है, इस विषय पर हमारे साथ विविध सामाजिक संगठनों से जुड़े श्री एकनाथ शेष्टी कन्हान नदी महोत्सव समिति एवं कन्हान चौपाल के संरक्षक, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर चीफ ब्यूरो आज छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार गुरुवे जी।
नमस्कार पातुकर जी।
जैसा कि मोबाइल वाणी पर जल संरक्षण क्योंकि जिंदगी इस विषय पर अभियान चल रहा है और क्योंकि विगत 3 सालों से आप नदी संरक्षण के माध्यम से वैचारिक परिवर्तन का अभियान चला रहे, तो छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए जल संरक्षण क्योंकि जिंदगी इस विषय पर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे?
देखिए दिनकर जी, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जल ही जीवन है। ये क्यों कहते हैं? हमारे शरीर में 80% जो हिस्सा है लगभग वो पानी का होता है और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जल ही जीवन है। जिस तरह आपको हवा नहीं मिलेगी तो आपका काम नहीं चलेगा, उसी तरह आपको पानी भी नहीं मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। और पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पानी का महत्व हम कितना समझ पा रहे हैं, इसका हम कितना संरक्षण कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम बीते कुछ वर्षों से काम करते आ रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, तब हमने देखा कि जल संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन इस जल संरक्षण में इस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है कन्हान नदी, और कन्हान नदी को इस क्षेत्र में जीवनदायिनी नदी कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि क्षेत्र का लगभग 90% का भूगर्भीय जलस्तर कन्हान नदी से जुड़ा हुआ है। बीते कुछ सालों से कन्हान नदी में जिस तरह से रेत का उत्खनन हो रहा है और इस रेत के उत्खनन के चलते नदी की जो प्राकृतिक स्थितियां बिगड़ रही है, प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है और इसके चलते नदी की जलधाराएं भी बदलने लगी है, और जब नदी की जलधाराएं बदलने लगी है, नदियों में गहराई होने लग गई है, तो क्षेत्र का भूगर्भीय जल भी प्रभावित हुआ है। हमारे सामने अहम सवाल ये था कि हम इस नदी के जो जल प्रवाह को जो है वो हम किस तरह जीवंत रख पाए, नदी का संरक्षण कैसे हो, इस पर काफी कुछ काम हुआ। और जब ये सामने रिजल्ट आया कि इसके लिए जनता में जन जागरण करने की आवश्यकता है, कन्हान नदी के किनारे बसे हुए गांव हो या ये संपूर्ण विधानसभा संसद का क्षेत्र हो, यहाँ पे जन जागरण करना आवश्यक है। लेकिन जन जागरण कैसे हो, इस पर काफी चिंतन मनन हुआ और अंत में एक निर्णय हुआ हमारे साथियों के बीच में कि कन्हान नदी एक जीवनदायिनी तो नदी है ही है, लेकिन एक रामाकोना में प्रतिवर्ष लगने वाले एकनाथ शेष्टी मेला के कारण इस नदी का मात्र 3 दिन के लिए एक नाम परिवर्तन होता है। कहने को ये कन्हान नदी है लेकिन एकनाथ शेष्टी मेले के दौरान इस नदी का नाम 3 दिन के लिए चंद्रभागा नदी हो जाता है। तो एक आध्यात्मिक संबंध इस नदी से जुड़ा हुआ है और अध्यात्म आया तो श्रद्धा और आस्था ये आना स्वाभाविक है। तो अध्यात्म में वैचारिक परिवर्तन हम लोगों का एक पूरे जो हमारा मिशन चलता है, एक पूरा काम जो चलता है, उसमें अध्यात्म में वैचारिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आप जितने सारे विकास कर लो, जितना सारा आप डेवलपमेंट कर लो, लेकिन जब तक मनुष्य का वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, ये सारे विकास जो है निरर्थक साबित होंगे। इसलिए अध्यात्म में वैचारिक परिवर्तन को सामने रखते हुए उसके पृष्ठभूमि पर श्रद्धा और आस्था को लेकर कन्हान नदी संरक्षण का काम बीते 3 वर्षों से कन्हान चौपाल के नाम से सतत जारी है और इस पर काम कर रहे हैं और लोगों को श्रद्धा और आस्था के साथ में कन्हान नदी को जोड़ा जा रहा है। जब तक लोग इसको श्रद्धा और आस्था से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम कन्हान नदी को नहीं बचा पाएंगे, और कन्हान नदी यदि नहीं बचेगी तो जल भी नहीं बचेगा, और जल नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे।
गुरुवे जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि बात जब श्रद्धा और आस्था की हो रही है, तो हमने बुजुर्गों के मुंह से भी सुना है कि अध्यात्म में हम जिस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र को दंड का अभयारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और राम गमन पथ मार्ग भी कन्हान नदी किनारे होते हुए गया है। जैसा कि यहाँ पर कुछ गाँव के नाम भी पड़े, रामाकोना, सीतापा, रामपुरी और बिछवी, ये गाँव पड़े और ये काफी पुरातन मंदिर करतापुर के पास भगवान श्री राम का है। और जब बात नवरात्रि की आती है तो इस नदी के किनारे कई देवियों के भी मंदिर स्थापित है, तो आप इसे किस तरह से देखोगे? क्योंकि आज हम जहां बात कर रहे परतापुर की, तो जहां मंदिर है वहीं पर अत्यधिक मशीनों से जल में से रेत निकाली जा रही है और विगत दिनों परिक्रमा यात्रा में भी यह देखने में आया था।
देखिए दिनकर जी, रेत नदी से निकालने वाला जो विषय है वो बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा क्रिटिकल भी विषय है। गंभीर इसलिए है कि उसके कारण हमारे क्षेत्र का जो जल है, जो भूगर्भीय जल है, वो प्रभावित हो रहा है, इसलिए वो गंभीर है। और क्रिटिकल इसलिए है कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग हो या विपक्ष में बैठे हुए लोग हो, जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, इन सारे लोगों की मिलीभगत से कन्हान नदी का रेत उत्खनन हो रहा है, इस सबकी मिलीभगत। तो यदि कहे कि हम इसमें शामिल नहीं है तो वो शायद वो झूठ बोल रहे हैं। और बीते 15 वर्षों में जिस तरीके से संसार क्षेत्र में कनान नदी का जो दोहन हुआ है शायद कभी पहले ऐसा हुआ हो। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इन नेताओं ने, फिर वो नेता किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसने कनान नदी को अपना धन कमाने का जरिया बना लिया है और उसी धन के माध्यम से वो क्षेत्र में अपनी राजनीति स्थापित करना चाहते हैं। नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन पब्लिक अब नाम लेने लग गई है, जनता अब नाम लेने लग गए हैं, कौन लोग हैं जो इस नदी के स्वरूप को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इसके लिए दिनकर जी, जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक नदी को बचाया नहीं जा सकता।
गुरु जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विगत दिनों कन्हा नदी को भयंकर बाढ़ आई थी और जल ही जीवन है और जल के बिना खेती भी अधूरी है। आप बिना केमिकल और रासायनिक खाद के जैविक खेती कर सकते हो, पर पानी के बगैर नहीं। और विगत दिनों कई खेत नदी के इसमें समा गए तो कई खेतों में आज भी पानी की कमी है, तो इसे आप किस तरह देखोगे? और आपके माध्यम से जो नवाचार हुआ है वो भी मोबाइल वाणी को श्रोताओं को बताने का कष्ट करेंगे।
देखिए दिनकर जी, आप जैविक कर लो, आप और किसी तरह की नैसर्गिक खेती कर लो, लेकिन उसके लिए आपको पानी लगेगा। बगैर पानी के आप खेती नहीं कर सकते। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हुई है कि आप बगैर खेतों में जो है पानी दिए आप फसल उगा लोगे। पानी की आवश्यकता है। आपने बाढ़ वाली बात की, मैंने इसीलिए पहले जिक्र किया था कि नदी का प्राकृतिक स्वरूप ही बदल डाला है। नदी का जो जल प्रवाह है उसकी दिशाएं बदल चुकी है और नदी के जल प्रवाह की दिशा बदलने का ही परिणाम है कि आज से 2 या 3 साल पहले जो महाबाढ़ कन्हान नदी में आई थी उसने कन्हान नदी के किनारे की हजारों हेक्टेयर भूमियों को काट डाला है। कृषि भूमि का कटाव हुआ है तो कई जगह नदियों ने अपनी धारा बदलकर खेतों में से बहाव निकाला है और उपजाऊ मिट्टी लेकर बहा ले गई है। इसके बावजूद भी किसानों की आवाज उठने पर भी कभी प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने या सत्ता में बैठे लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उस महाबाढ़ के बाद में जो नुकसान खेती का हुआ उसकी कभी भरपाई हुई नहीं और आज भी वो खेत बंजर होते जा रहे हैं। रही बात आपने खेती में नवाचार की है, जल ही संरक्षण है। हम खेती में सिंचाई करते हैं फसलों की। सिंचाई की अनेक परंपराएं हैं। हमारे पूर्वजों से चली आ रही परंपराओं में पानी का संरक्षण होना चाहिए था, वो उसमें शामिल नहीं। हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन होता है और अधिकांश किसान आज भी नई टेक्नोलॉजी के बजाय फ्लड इरिगेशन करते हैं और फ्लड इरिगेशन में फसलों को जितना पानी आवश्यक है उससे कई गुना पानी हम बर्बाद कर चुके होते हैं। मैं भी एक खेती किसानी का शौक रखता हूँ और मैंने संतरे का बगीचा लगाया है, जो मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। ऑर्गेनिक कहने के बजाय मैं नैसर्गिक खेती में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। मैंने अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाया है और मैं दिनकर जी आपको बता दूं कि इस अप्रैल महीने में प्रति झाड़ को 250 लीटर पानी की आवश्यकता है और मैं ड्रिप के माध्यम से उतना ही पानी अपने पेड़ों को दे रहा हूँ। यदि मैं फ्लड इरिगेशन करता तो शायद एक एक पेड़ को मेरा 1,000-2,000 लीटर पानी चला जाता, जबकि मुझे आवश्यकता है प्रति पेड़ 250 लीटर की। और आज मैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, मैं उतना ही पानी जमीन के भूगर्भ से निकाल रहा हूँ जितना मेरी पेड़ों को आवश्यक है। किसानों के लिए ये मेरा संदेश है कि कृपया जल को यदि आज आपने नहीं बचाया तो कल आपके खेत बंजर रहेंगे, ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा तो आप खेती किसके भरोसे करोगे? इसलिए भूगर्भ से, जमीन के गर्भ से अत्यधिक पानी निकालकर उसकी बर्बादी आज रोकने की आवश्यकता है। जमीन से उतना ही पानी निकाला जाए जितना आपकी फसलों का आवश्यक है और इसके लिए आपको नई तकनीकी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर वो ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर के माध्यम से हो, या इरिगेशन की और भी नई नई तकनीकें ईजाद हो रही है, उसका उपयोग किसानों ने करना चाहिए तो ही हम जल संरक्षण कर पाएंगे। दिनकर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक पत्रकार भी हूं और पिछले कुछ सालों से कन्हान नदी की जो रेत उत्खनन हो रहा है उस पर काम कर रहा हूं और काम करते हुए देख रहा हूं कि मैं कन्हान नदी के किनारे बसी हुए गांव या जो खेत है वहां पे प्रतिवर्ष भूगर्भीय जल स्तर निरंतर तेजी से नीचे जा रहा है। जिस जगह पे 25 मीटर पे पानी था आज वहां 30 मीटर 35 मीटर के नीचे पानी चला गया है और यह हर साल इसी तरह हो रहा है। जहां आज 30 मीटर पे पानी मिल रहा है, पता चला साल भरे के बाद में वहां 35 मीटर 40 मीटर नीचे पानी चला गया। धीरे धीरे ये जब पानी नीचे चला जाएगा और हमारी भूगर्भ से पानी निकालने की क्षमता खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारी खेती को पानी नहीं मिलेगा, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि जैसा भी हो हमको जल संरक्षण करना पड़ेगा और भूगर्भीय जल स्तर को मेंटेन करने के लिए
हमको हमारे क्षेत्र की बहने वाली नदियां हो, नाले हो, इसका हमको संरक्षण करना पड़ेगा। यदि हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो जल संरक्षण की बात तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, पानी को नहीं बचा पाएंगे, और पानी को नहीं बचाने के साथ साथ में हमारी क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी को भी हम नदी नालों में बहाने के लिए छोड़ देंगे। और ऐसा यदि निरंतर होते रहा तो पानी के साथ में, बारिश में पानी के साथ में हमारी उपजाऊ भूमि भी, मिट्टी नदियों में बहकर चली जाएगी। इसलिए हमको जरूरी है कि जल संरक्षण के लिए जो भी उपाय हो वो हमको करना पड़ेगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाना पड़ेगा, जो नदी नाले हैं, जो भी जल स्रोत है उसका हमें संरक्षण करना पड़ेगा।
गुरु जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके खेत में मजदूर न होते हुए भी,
हाँ,
आप खेत से 10 किलोमीटर दूरी पर बैठकर अपने खेत को सिंचित कर लेते हो मोबाइल के माध्यम से, वो कैसे संभव हुआ और इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है?
दिनकर जी, इसके पीछे टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, इसको GSM सिस्टम कहते हैं। ये मोबाइल से कनेक्टेड होता है और मोबाइल से संचालित होता है। आप इसे आप कभी समझिएगा कि हम अपने यहाँ से उपग्रह छोड़ते हैं और सैटेलाइट छोड़ते हैं, और उस उपग्रह में या सैटेलाइट में वहाँ कोई यदि तकनीकी गड़बड़ी आए तो हम अपने यहाँ प्रयोगशाला में बैठ के उसको सुधारते हैं। ये तो आप जानते हैं ना?
हाँ जी।
कि हम पृथ्वी पे हमारी जो प्रयोगशाला है उसके माध्यम से वहाँ बैठ कर हम वहाँ से अपने सैटेलाइट को सुधारते हैं। वही टेक्नोलॉजी GSM सिस्टम में है। मैं अपने संतरे के बगीचे से, खेत से मैं 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ, और GSM सिस्टम के माध्यम से मैं जब चाहे तब बिजली यदि आपूर्ति है तो मैं अपने मोबाइल से अपने खेत की मोटर चालू करता हूँ, बंद करता हूँ। इतना ही नहीं दिनकर जी, तो मेरे खेत में बिजली का सप्लाई कैसे हो रहा है, वो हेल्पफुली है या कहीं लाइन में फॉल्ट है, या कुएं का पानी कितना है, वो पानी कम तो नहीं हो रहा है, कितना स्तर है कुएं का, ये भी सारा मैं मोबाइल के माध्यम से पता कराता हूँ। ये है नई टेक्नोलॉजी। हम विज्ञान युग में जीते हैं, लेकिन विज्ञान युग में जीने के साथ में विज्ञान का उपयोग तो करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सोच भी हमने रखनी चाहिए, और किसानों को वैज्ञानिक सोच रखना पड़ेगा। जब तक किसान वैज्ञानिक सोच नहीं रखेंगे वो तर्क नहीं कर पाएंगे, और तर्क नहीं कर पाएंगे तो वो उस पर जो है विचार नहीं कर पाएंगे, और विचार नहीं कर पाएंगे तो वो आगे विकास भी नहीं कर पाएंगे। नहीं तो परंपरागत रूप से लोग खेती करते आ रहे हैं, परंपरागत रूप से सिंचाई में पानी की बर्बादी कर रहे हैं। जब तक उस पर वो वैज्ञानिक रूप से विचार नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए किसान को विज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, साथ में वैज्ञानिक सोच भी रखना पड़ेगा।
गुरु जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न
जी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में देखने में आता है अधिकतर जब नल चालू होते हैं तो लोग अपने नल के पाइप से गाड़ियां धोते हैं, नलों की टोटियां खुली रह जाती है, पानी बहते रहता है, तो इन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे?
देखिए, मैं दो बातें करूंगा। पहली बात तो मैं आम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए कहूंगा कि कृपया अब बहुत हो चुका है, कृपया बहुत हो चुका है, अब पानी को बचा लीजिए। आप तो जिंदगी गुजार लोगे, आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी, जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो आपको कोसेगी कि हमारे जो हमारी पीढ़ियां थी उन्होंने संरक्षण नहीं किया, आज इसलिए हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया जल को महत्व, जल का महत्व समझिए, और उसका जितना हो सके उसका संरक्षण करिए, बेहद कम पानी का उपयोग करें और पानी को बचाइए। पानी आज बचेगा तो कल आपके लिए रहेगा, आपकी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेगा। ये बात एक अपील की हो गई। लेकिन दिनकर जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक हम लोगों पे कोई दंडा नहीं चलेगा तब तक हम मानते भी नहीं है। मैं तो आज ये कहता हूँ कि पानी की बर्बादी करने वाले लोगों पर कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए अर्थदंड होना चाहिए, या जो भी दंडित हो वो करने की आवश्यकता है। जब तक आप सख्त नहीं होंगे लोग भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा है कि जब तक इजी वे में मिलता है, आसानी से मिलता है, वो उसका महत्व नहीं समझते। दिनकर जी, आज भी है कि जिन क्षेत्रों में चार चार पांच पांच दिन के बाद में पानी मिलता है वहां लोग पानी का महत्व समझने लगते हैं, लेकिन संसद क्षेत्र में आज भी पानी प्रचुर मात्रा में है, लोग उसका महत्व नहीं समझते। मेरा यही संदेश है कि कृपया बहुत हो चुका है, आने वाली पीढ़ी के लिए पानी को बचा के रखिए। पानी बचेगा तो पीढ़ियां बचेगी, पानी बचेगा तो आपका जीवन बचेगा, पानी बचेगा तो स्थिति बचेगी, पानी बचेगा तो पेड़ बचेंगे, और पेड़ बचेगा तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। सारा सारा संबंध पानी से है। कृपया पानी को बचाइएगा, पानी को बचाइएगा, पानी को बचाइएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जो आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। संदेश के साथ साथ आपके द्वारा जो नवाचार किया गया उसकी जानकारी भी आपने मोबाइल वाणी के श्रोताओं को दी। इसलिए छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता है। जल ही जीवन है। धन्यवाद।